अच्छा, माल की हैसियत माशरे में ऐसे ही है जैसे इंसानी जिस्म में खून का चलना। दौलत माशरे के अंदर खून की तरह है जिसकी सर्कुलेशन नहायत जरूरी है। कोई खून जिस्म के किसी हिस्से में अगर जमा हो जाए क्या होगा, या ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? बीमारी होगी, हलाकत होगी। कहीं एक जगह जम जाए या प्रेशर ज्यादा बढ़ जाए, दोनों सूरतों में हलाकत है। अगर वो प्रॉपर सर्कुलेशन पूरे जिस्म को मिलती रहे तो आप एक्टिव रहेंगे और बहुत मुतहरक और बहुत अच्छे काम कर सकेंगे। मसलन दिमाग को खून की सप्लाई नहीं हो रही या जिस्म के किसी हिस्से में रुक गए तो क्या होगा? आप बीमार पड़ जाएंगे, आप काम नहीं कर सकेंगे। तो जिस माशरे के अंदर दौलत चंद हाथों में जमा हो जाती है और सारे माशरे में सर्कुलेट नहीं करती, सबसे नहीं गुजरती, हर जगह नहीं घूमती, वहां वो माशरा बीमार हो जाएगा, सरवाइव न कर सकेगा। उसमें तरह तरह की बीमारियां बलाएं फूट पड़ेंगी दौलत के एक जगह जमा होने की वजह से। तो जब कोई शख्स महज अपने पैसे पर पैसा कमाने लगता है, किसी को पैसा कर्ज पर देकर उस पर फायदा उठाने लगता है, तो ऐसे में वो दरअसल जरूरतमंद इंसान से फायदा उठाकर उसका माल भी खींचने लगता है, क्योंकि वो जायद माल उससे ले रहा होता है। अब क्या होता है कि जरूरतमंद और जरूरतमंद हो जाता है और मालदार और मालदार हो जाता है। दौलत की सर्कुलेशन सारे माशरे में होने की बजाय चंद मखसूस मालदार अफराद की तरफ उसका फ्लो ज्यादा हो जाता है। इससे माशरे के अंदर नाहमवारी पैदा होती है। सदकात से क्या पैदा होता है? खुशगवारी आती है। जिनके पास होता है वो जब उनको देते हैं, जिनके पास नहीं तो उससे उनकी कुव्वत खरीद भी बढ़ती है और इससे बिजनेस फ्लरिश करता है। मार्केट के अंदर खरीदार ज्यादा बढ़ जाते हैं। जबकि सूद में दौलत सिर्फ चंद हाथों की तरफ सिमटने लगती है, उसकी तरफ उसका फ्लो हो जाता है, तो खरीदारी की कुव्वत आम माशरे में कम हो जाती है, सिर्फ चंद मखसूस लोगों के पास रह जाती है। नतीजा ये होता है कि इस माशरती नाहमवारी की वजह से उसका असर बिजनेस पर भी पड़ता है और उसके अलावा लोगों के दिलों पर भी पड़ता है। जब गरीब गरीब होता चला जाएगा और अमीर अमीर होता चला जाएगा तो माशरे में नाहमवारी बहुत होगी, जिसके नतीजे में खौफ और गम दूर नहीं होगा बल्कि खौफ और गम बढ़ जाएगा। उसमें आप देखें कि एक तो गरीब और अमीर के दरमियान एक नफरत, एक अदावत, इख्तलाफ, लड़ाई झगड़ा, फसाद की कैफियत, बदमनी, चोरी, डाका, कत्ल, ये सब कुछ आएगा। फिर आप देखें कि जिनके पास माल ज्यादा हो जाता है वो कुछ और अलग मुसीबतों और खराबियों का शिकार हो जाते हैं। एक तो दोनों तरफ, यानी गरीबों के अंदर एक रिएक्शन पैदा होगा, वो अमीरों को निशाना बनाएंगे अपना। दूसरा, जिन लोगों के पास माल जमा हो जाएगा ज्यादा, आप देखें कि बहुत से लोग नहायत शरीफ अच्छे लोग होते हैं, लेकिन अमूमन आपने अपने खानदानों में या माहौल में ऐसी मिसालें देखी होंगी कि जो ही माल ज्यादा आने लग गया खराबियां भी ज्यादा होने लग गई, साथ ही बहुत सी हराम चीजें भी चली आई। बल्कि हराम चीजों की कसरत होती ही माल की कसरत की वजह से है। शराब भी वही अफोर्ड कर सकता है जिसके जेब में पैसा हो और एक्सेसिव मनी हो, और फिर खुसूसन माफ कीजिए, जब पैसा भी हलाल का हो तो उससे शराब खरीदना मुश्किल है और खरीदने को दिल भी नहीं चाहेगा। लेकिन जब वो सूद का पैसा हो, मसलन हराम पैसा हराम ही जगह पर लगाने के काबिल होता है, नापाक चीज से कभी पाकी नहीं फूट सकती, खैर और भलाई नहीं आम होती, वो बेबरकती और गलत चीजों में ही इस्तेमाल होता है। लिहाजा जब हराम का माल आता है वो हराम जगहों पे लगता है, जिससे बेचैनी बढ़ती है, बेइत्मीनानी आम होती है, आपस में नफरतें और अदावतें बढ़ती हैं। अब देखें कि मसलन एक खानदान था जो एक मोतदिल हद तक कमा रहा था, जकात दे रहा था, सदका खैरात दे रहा था, आपस में खानदान के अंदर मोहब्बत और प्यार था, जो ही उनमें से किसी एक ने ऐसा कोई काम हराम का शुरू किया, माल ज्यादा आया, बहन भाइयों से कट गया, हराम की कसरत हो गई, हराम चीजों में इन्वॉल्व हो गया, फिर आप देखें कि शराब के साथ दूसरी औरत भी आ गई। जब पैसा कम होता है तो अमूमन दूसरी तरफ निगाह कम उठती है, और अमूमन क्या होता है फिर, हराम हलाल की तमीज बाजू का, तो ये मैं ये नहीं कह रही कि नऊजुबिल्ला सब ऐसा करते, यानी इन चीजों का एहतमाल हलाल के दायरे में न होने के बराबर या कम से कम होता है। ये चीजें यानी एक हराम बहुत से हराम और गलत कामों को जन्म देने का सबब बनता है। तो जितना माल बढ़ता जाता है तो हवस बढ़ती जाती, इतना हो गया अब इतना और हो जाए, उतना और हो जाए, सारी तवज्जो सिर्फ उसके इकट्ठा करने पर, वही पागलपन हो जाता है। बावला शख्स जिसे अपनी केयर भूल जाता है, बाल बच्चों की भूल जाता है, इसी तरह हराम के जराए से बहुत माल इकट्ठा करने वाले खुद अपनी जात की, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने खानदान, इन तमाम से गाफिल हो जाते हैं। तो वो समझते हैं हमने माल दे दिया, पैसा दे दिया, अब ये मोहब्बत के भी बदल हो गया और बाकी सब चीजें भी इसी से पूरी हो जाएंगी। तो वो जो इंसान को इंसान से मोहब्बत और हमदर्दी और शफकत मिलती है, उसकी जगह माल से पूरी करने की कोशिश की, जो बिल्कुल ही उलट हो गया सब कुछ। फिर आप देखें कि हराम के माल से जो सदका दिया वो कबूल नहीं, अगर विरासत में छोड़ा तो जहन्नम का तोशा लेके मरा इंसान। तो हलाल का असर नस्लों तक जाता है, इसी तरह हराम का असर भी नस्लों तक जाता है, नस्लें मुतासर होने लगती हैं उससे। तो बात मैं ये कर रही थी कि जब माल एक जगह जमा हो जाता है तो उससे खराबी होने लगती है बहुत सी। फिर आप ये भी देखिए साथ कि मसलन आप खाना खाते ही चले जाएं और जो वेस्ट है उसका वो जिस्म से बाहर ना आए तो क्या होगा। तो ऐसा मरीज कि जो सिर्फ खाए और उसका सिस्टम काम ना करे कि जिससे उसके वेस्ट मादे बाहर जा सकें, तो ऐसे शख्स की तकलीफ और मुसीबत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर एक शख्स सिर्फ माल हासिल कर रहा है और उसे खर्च नहीं कर रहा, दूसरे की ज़रूरत पे नहीं दे रहा, निकाल नहीं रहा, तो इसी वजह से हम देखते हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पे दिखाए गए कि सूद खारों के पेट बहुत बड़े बड़े, क्योंकि वो सिर्फ माल डाल रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, रुपये से रुपया बढ़ा रहे हैं और आगे नहीं दे रहे, और उसको खाने के लिए फिर कौन आए, सांप डाले गए। इसके बरक्स जो शख्स माल को हलाल तरीके से कमाए, अपनी जात पर भी खर्च करे, दूसरों पर भी खर्च करे, और फर्ज के अलावा सदकात के अलावा मकरूज को कर्ज भी दे, और अगर मकरूज कर्ज वापस न कर सके तो उसको सदका कर दे, उसका क्या अजर है या क्या जजा है। हजरत अबू कतादा फरमाते हैं कि जिस शख्स को ये बात महबूब हो कि अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन की सख्तियों से निजात दे, उसे चाहिए कि तंग दस्त को मोहलत दे या उसे माफ़ कर दे। सही मुस्लिम की रिवायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के ज़िम्मे किसी का कर्ज हो और मकरूज अदायगी में ताखीर करे तो कर्ज खाह के लिए हर दिन के इवज़ सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी तंग दस्त को मोहलत दे या माफ़ कर दे, क़यामत के दिन अल्लाह से अपने साए में जगह देगा। सही मुस्लिम की रिवायत। और इसी तरह अगर मखरूज जो है तंग दस्त हो या कर्ज खा ज्यादा हो, तो इस्लामी अदालत कर्ज खा या कर्ज खाहों से मोहलत दिलवाए या कर्ज का कुछ हिस्सा माफ कराएगी। यानी एक शख्स अगर मकरूज है, दब गया, जैसे एक्सीडेंट है किसी का खुदा ना खासा, तो अब उसमें सिर्फ उसके रिश्तेदारों या खानदान वालों का ही तो जिम्मा नहीं, दूसरे भी जो आस पास है उनका भी जिम्मा है। तो ऐसी सूरत में क्या है कि इस्लामी हुकूमत यानी इस्लामी निज़ाम जब कायम हो तो हुकूमत इंटरफेयर करे, मकरूज शख्स का कर्जा माफ़ कराए या उसे मोहलत दिलाए। ये उस सूरत में जब कोई दिवालिया हो जाए। हज़रत अबू सईद कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स को फल की खरीदो फरोख्त में नुकसान हुआ और उसका कर्जा बहुत बढ़ गया। आपने लोगों से फरमाया इस पर सदका करो, लोगों ने सदका किया, फिर भी इतनी रकम ना हो सकी जो कर्जा पूरा कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज खाहों से फरमाया जो कुछ तुम्हें मिलता है ले लो और तुम्हारे लिए यही कुछ है, यानी और नहीं दे सकता ये। यानी हुकूमत जबरन भी माफ करवा सकती है अगर एक शख्स बिल्कुल ही पिस कर रह जाए अपने कर्जों में। हजरत अब्दुल्ला बिन काब कहते हैं कि मेरे बाप काब बिन मालिक ने अब्दुल्ला बिन अबी हजरत से مسجد نبوی میں اپنے قرض کا تقاضا کیا، دونوں چلانے لگے۔ انسان تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے، ان دونوں کی آوازیں سنی تو آپ حجرے کا پردہ اٹھا کر برآمد ہوئے، کعب کو پکارا۔ کعب نے عرض کیا، حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اشارے سے فرمایا آدھا قرض چھوڑ دو۔ کعب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے ابو حضرت سے فرمایا اٹھ اور اس کا قرض ادا کر، یعنی آپ نے کچھ معاف کرا دیا اور کچھ ادا کرنے کو کہا۔ پھر اسی طرح اگر کوئی قرض خواہ مقروض کے ہاں اپنی چیز بے جنسی ہی پالے تو وہ اس کی ہوگی، یعنی پیسے کی بجائے اگر کوئی دوسری چیز اس کے عوض مل رہی ہو تو وہ بھی دی جا سکتی ہے، یعنی جسے آپ کہتے ہیں قرض کرنا۔ لیکن کچھ چیزیں قرض کرنے سے منع کیا گیا ہے، مثلاً رہنے کا مکان جس میں وہ شخص واقعی خود رہ رہا ہو، اس کو نکال کے اس کا مکان قرض نہیں کیا جائے گا۔ اس کے اور اس کے اہل خانہ کے پہننے کے کپڑے، تاجر ہے تو اس کے کچھ تجارت کا سامان، اور اگر صنعت حرفت میں ہے تو اس کے کچھ اوزار، اور گھر والوں کے کھانے پینے کا سامان۔ یہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ آخری حد پر بھی جا کر انسانی ہمدردی کو نہ بھولو، کسی کو ننگا نہ کرو، اس کو بھوکا نہ چھوڑو، اس پہ ظلم نہ ڈھاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے۔ کس دن سے؟ قیامت کے دن سے۔ کیا ہوگا اس دن؟ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تم لوٹائے جاؤ گے اس دن اللہ کی طرف۔ یعنی یہ سود وہی چھوڑ سکتا ہے جس کو آخرت کی طرف واپسی کا اندیشہ ہو، جس کے دل میں آخرت کا خوف ہو، فکر ہو۔ کب تک دنیا میں یہ عیش و عشرت کرتے رہو گے؟ کب تک تمہیں یہ سب کچھ حاصل رہے گا؟ اس دن کا بھی سوچو۔ ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو، کیا؟ ما کسبت، جو اس نے کمائی کی۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی کسی انسان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ آیت بھی بہت سے روایات کے مطابق قرآن پاک کی آخری آیت ہے جو آپ کی وفات سے چند روز پہلے اتری۔ ایک اور آیت کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخری نصیحت جو لوگوں کو کی گئی وہ کیا ہے؟ کہ لوگوں اپنی آگے کی فکر کرو، آخرت کا سوچو۔ آپ دیکھیں کہ کبھی انسان واقعی اپنے مرنے پہ غور کرے تو صحیح معنوں میں انسان کو اپنے گناہ یاد آ سکتے ہیں، اعتراف کرتا ہے انسان اور توبہ بھی کر سکتا ہے۔ رات میرے ساتھ ایسی ایکسپیرینس ہو، میں رات گہری نیند سو رہی تھی کہ یکایک میری آنکھ کھل گئی، مکمل خاموشی تھی، اور اتنی شدید احساس ہوا کہ ایک رات ایسی ہوگی جب میں قبر کے اندر ہوں گی، کئی من مٹی کے نیچے، اور بالکل یوں لگا کہ جیسے وہیں پر ہی ہوں۔ ہم سب کا یہی حال ہونے والا ہے نا، کبھی تھوڑی دیر رک کے سوچا تو کریں، یہ نرم گرم بستر اور یہ ٹھنڈے کمرے اور یہ سب کچھ صدا ایسے نہیں رہے گا، بہت جلد یہ سب کچھ ہم سے چھوٹ جائے گا، اور جہاں مجھے اور آپ کو لے جایا جائے گا جس قبر کے اندر، وہاں نہ کوئی بستر بچھایا جائے گا، نہ کوئی میٹرس رکھا جائے گا، نہ کوئی اس پہ چادر ہوگی، نہ ہی کوئی لائٹ لگائی جائے گی، نہ ہی کچھ اور، سوائے اعمال کے اور کوئی ساتھ نہ ہوگا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی ہمدرد، نہ کوئی غمخوار۔ کبھی رات کو آنکھ کھلے تو اس چیز کو سوچیں، محسوس کریں، کیونکہ دن کی رونق میں یہ بات محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ذرا سوچیں کہ کیا دن ہوگا، کیا رات ہوگی وہ جب ہم اس کمرے میں ہوں گے، تنہائی میں، اندھیرے میں، اور اس کے بعد تو تنہائی ہی تنہائی ہے۔ اس دن اٹھنا ہوگا کہ کوئی دوست دوست نہ رہے گا، جب کوئی رشتہ دار رشتہ دار نہ ہوگا، کوئی پاس نہ ہوگا، کوئی کام نہ آئے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، اس وقت کیا ملے گا؟ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، ہر شخص کو پورا دیا جائے گا، یا ماں کا سبق، جو اس نے کمایا ہوگا، حلال یا حرام، اچھا یا برا، जो आमाल होंगे वही सामने लाए जाएंगे। वहुम ला युज़लमून, किसी पे जुल्म ना होगा। जुल्म क्या है? किसी हकदार को उसका हक न देना, कि कुछ किया हो तो उस पे मिले ना, या कुछ ना किया हो तो वो आपको मिल जाए।
यहाँ एक जिंदा मिसाल आपके सामने रखी जाएगी। पिछले चंद दिनों से मुसलसल एक खत आ रहा था हमें, और कल मैं जब यहाँ से निकली तो पता चला कि एक खातून है, वो कई दफ़ा फ़ोन भी कर चुकी हैं। इन्होंने भी सूद पर कर्जा ले रखा है। और इनका हुआ क्या कि 1994 में शौहर ने किसी कारोबार के लिए 30,000 रुपये लिए, जिस पर हर माह 3,000 रुपये सूद देना तय पाया। कारोबार में नुकसान हो गया, सूद की किस्त अदा करने के लिए अपना एक कमरे का मकान फरोख्त करना पड़ा। 1997 में शौहर एक हादसे में फौत हो गया। उसके बाद बीवी की जिम्मेदारी थी कि वो सूद की किस्त अदा करती। वो लोगों के घरों में काम करके और कुछ सिलाई वगैरह करके कई साल 3,000 रुपये माहाना सूद की किस्त देती रही। असल कर्जा नहीं अदा हो पा रहा, सिर्फ सूद दिया जा रहा है। इस दौरान एक घर में काम करते हुए सीढ़ियों से गिर पड़ी और टांग टूट गई। आमदन न होने की वजह से सूद की किस्तें हर माह की जमा होना शुरू हो गई। अब इस माह तक 87,000 रुपये सूद बन गया, जबकि असल रकम 30,000 रुपये अदा करना अपनी जगह है। वो तो लाख से बढ़ गई ना बात, और कई महीने वो अदा भी कर चुकी। मुसलसल 6 साल से सिर्फ सूद दे रही है। अब किसी ने बताया कि सूद का लेन देन करने वाला मुसलमान ही नहीं रहता। ये कहती है कि मेरा दिल कहता है कि मैं मुसलमान ही हूँ, बल्कि जिन साहिबा से मैंने मसला पूछा उन्होंने कुरान मजीद पढ़ा हुआ था और मैं तो कुछ नहीं जानती। उसके दिल में शक पड़ गया और उलझन का शिकार हो गई कि अब मेरा ईमान भी सलामत है कि नहीं। यानी इसने खत में ये लिखा है कि मेरे साथ ये मसला है कि चूंकि मैं सूद देती रही हूँ तो क्या मेरा अब ईमान भी सलामत है या नहीं। और फिर लिखती है कि मैं जल्द से जल्द अपना कर्ज और सूद उतारना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई जरिया आमदनी नहीं। शौहर फौत हो चुका है, खुद अपनी टांग टूट जाने से काम नहीं कर सकती। एक बच्ची है 6 साल की, क्या मैं अपने जिस्म का कोई हिस्सा, आंखें या गुर्दा फरोख करके अपना कर्जा और सूद उतार सकती हूँ? इस्लाम का इसके बारे में क्या हुक्म है? इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूद खार जो है उसकी सज़ा अल्लाह ताला ने इतनी सख्त क्यों रखी है और ये किस किस्म का जुल्म है। फिर इसी तरह सूद पर मबनी फाइनेंसिंग जो होती है उसमें माल की ऐसी तकसीम होती है जो बराबर नहीं होती। इसमें अमीर यानी कर्ज देने वाला जो है वो अमीर होता चला जाता है और लेने वाला गरीब होता चला जाता है। अफराद और अकवाम दोनों के कर्जे बढ़ते चले जाते हैं। यानी सूद पर लिया हुआ कर्ज आमतौर पर अदा नहीं हो पाता, बल्कि उसमें इजाफा होता चला जाता है, क्योंकि वो अपने लिए हुए कर्जे पर सूद की रकम ही देते चले जाते हैं और साथ साथ मजीद नए कर्ज लेते हैं ताकि वो अपने मौजूद तर्ज ज़िंदगी को बरकरार रख सकें या अपना स्टैंडर्ड बढ़ा सकें। हालांकि हकीकत यह है कि शरीयत ने कर्ज लेने की इजाज़त सिर्फ उस वक्त दी है जब ऐसी सख्त ज़रूरत हो जिसके बगैर काम चलाना नामुमकिन हो। इस्लाम ने इसीलिए अपने ज़राए से ज़्यादा बढ़कर खर्च करना भी नापसंदीदा करार पाया और अपने मौजूदा माल को बढ़ाने की गर्ज से कर्जा लेने को भी नापसंदीदा करार दिया गया। इस बात की संगीनी का एहसास हमें इस बात से भी हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूज का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे ताकि लोग कम से कम कर्ज लें और लें तो अदा करने की फिक्र करें। लिहाजा सूद की रकम या किसी भी मुआवजे की रकम पहले से मुकर्रर नहीं की जाती थी। इस्लाम का बेहतरीन तरीका और अंदाज तो यही है कि कर्ज देना और उसकी अदायगी दोनों अमल साले बन जाते हैं। एक मोमिन दूसरे की ज़रूरत के वक्त काम आता है और दूसरा अपना कर्ज वापस करते वक्त अगले का एहसान नहीं भूलता कि ये मेरे मुश्किल वक्त में काम आया था। इसी तरह कर्जे अपनी आमदनी बढ़ाने का जरिया नहीं होते बल्कि आखिरत में अजर व सवाब का बायस भी बन जाते हैं। सूद के जरिए अमीर मुल्क बहुत कमाई करते हैं, क्योंकि जिन गरीब ममालिक को वो कर्ज देते हैं वो मजीद और कर्ज लेकर सूद की रकम और कुल कर्ज ली हुई रकम को वापस लौटाने की कोशिश में मुस्तकिल तौर पर लग जाते हैं। इस तरह पैसा बजाय इसके कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज बने, बजाते खुद एक असबाब तिजारत या कमोडिटी बन जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि गरीब ममालिक अपने प्रॉफिट्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते और अपनी हालत को बेहतर नहीं कर सकते। वो पैसा जो मुल्क अपनी तालीम, सेहत, गुर्बत मिटाने के लिए खर्च कर सकता है वो बड़ी बड़ी सूद की रकमें अदा करने में लग जाता है। इस तरह गरीब ममालिक एक विशेष साइकिल में फंसे रहते हैं। और परमानेंट तौर पर गरीब हो जाते हैं। पाकिस्तान की मिसाल हमारे सामने है। पाकिस्तान अपने टैक्स रेवेन्यू, जो पब्लिक का पैसा होता है, जो पब्लिक मेहनत से कमा कर गवर्नमेंट को देती है, तो उसमें 378 बिलियन कर्जे अदा करने में खर्च करता है। यानी हम लोग जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स में से 378 बिलियन रुपए कहाँ चले जाते हैं? सिर्फ सूद अदा करने में। जो भी मेहनत करते हैं, उससे जो भी आमदनी होती है, उसमें से जो टैक्स दिया जाता है, तो गवर्नमेंट की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा किसके पास चला जाता है? कर्जा देने वाले ममालिक के पास चला जाता है। देखा जाए तो ये टैक्स रेवेन्यू का 3/4 हिस्सा है, 3/4 हिस्सा है पूरे टैक्स का, जो सूद अदा करने में दे दिया जाता है। अब बाकी क्या बचा? कि जिससे हम अस्पताल बनाएंगे या सड़कें बनाएंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, टैक्स देने का क्या फ़ायदा, हम टैक्स देते भी हैं तो बनता कुछ नहीं, लिहाजा टैक्स चुराओ। फिर कोई टैक्स भी देने पर राज़ी नहीं होता, क्योंकि अवाम को उसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, बल्कि वो सब का सब दूसरों के पास जा रहा है। और आपने देखा होगा कि फिर सिर्फ कर्जा चुकाना तो अभी दूर की बात है, महज उसके ऊपर जो सूद है उसको चुकाने के लिए हर साल हम वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्जे लेते हैं, और फिर उनकी पॉलिसीज हमारे ऊपर आती हैं। फिर कभी बिजली महंगी करने को कहते हैं, कभी गैस महंगी होती है। उसका नतीजा क्या होता है कि हमारे अवाम और ज़्यादा गरीब से गरीब तर होते चले जाते हैं, क्योंकि जो हमारी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा है वो दूसरों को चला जाता है। पिछले 10 सालों में उन लोगों की तादाद जो पावर्टी लाइन से कम है, यानी जो दिन के $1 से ज़्यादा नहीं कमा सकते, उनकी तादाद दुगनी हो चुकी। और इसके बरक्स जो मालदार अफराद हैं, जो कर्जे देते हैं, उनकी आमदनी 20% से ज़्यादा बढ़ गई है। तो सूदी निज़ाम में क्या होता है कि अमीर अमीर तर होता चला जाता है और गरीब गरीब तर होता चला जाता है। तो सूद जो है, न सिर्फ ये कि अफराद बल्कि अकवाम के लिए भी बहुत मुज़र साबित होता है। चलिए मैं चंद एक सवालात देखती हूँ। आमतौर पर लोग ये सवाल करते हैं कि जिन लोगों का कोई कमाने वाला ना हो, मसलन बेवा खातून हैं या यतीम बच्चे हैं जिनको कोई लुक आफ्टर नहीं करता, तो ऐसे लोग अगर अपना पैसा फिक्स करा दें और उस पर आमदनी इस्तेमाल करें तो उनका हुक्म क्या है? बुनियादी तौर पर आप देखें कि हराम को कभी भी हलाल करार दिया नहीं जा सकता किसी भी उज़र मजबूरी की वजह से। हर एक के हालात अल्लाह ताला के सामने हैं कि कौन कितना मजबूर है। अल्लाह ताला ने तो एक मुसलमान सोसाइटी को हुक्म क्या दिया है, रिश्तेदार को देने का दुगना अजर बताया, फिर उसके बाद आम सोसाइटी को उभारा कि वो सदक़ात दें। लेकिन अगर लोगों के अंदर दीन ही नहीं, ईमान ही नहीं, कोई वाकई किसी शख्स के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं, तो ऐसे लोग अगर अपनी इज्जत बचाने के लिए या अपने इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में एक इस्तरारी कैफियत के तहत कुछ करते हैं, तो उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, उनका मामला हल्का होगा। लेकिन एक शख्स जो जानबूझकर इस चीज़ में महज माल बढ़ाने के लिए सूद की बीमारी का शिकार है, तो उसका मामला मुख्तलिफ होगा। अब इस पर कोई आम हुक्म तो नहीं दिया जा सकता, और इससे ना तो सूद को हलाल करार दिया जा सकता है, ना उसका कोई जवाब निकलता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो बात कही जा सकती है, फ़मन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह। अब कौन मजबूर है और कौन किस मुसीबत में है, ये वही जानता है, दूसरे नहीं जानते। बसा औकात कुछ लोग फिक्स भी करा लेते हैं और रिश्तेदारों से भी माल ले लेते हैं और अंदर खाने माल बढ़ाते रहते हैं, सोना जमा करते रहते हैं या और इस तरह की चीज़ें। अब बज़ाहिर लोगों को दिखाने में अगर वो बहुत मजबूर भी नज़र आते हैं, लेकिन अंदर नीयत कुछ और है, बागी और आदि की कैफियत है, तो फिर उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। लेकिन इसमें भी आप देखिए कि फिर भी ऐसे तरीके इख्तियार करने के लिए बहैसियत उम्मत हम मुसलमानों को सोचना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बहुत काम भी हो रहा है। अगर किसी से कर्ज लिया जाए और अदा न किया उसको, और कर्ज देने वाला मर जाए या लापता हो जाए और उसके वारिसों का भी इल्म ना हो, तो कर्ज लेने वाले को कर्ज की रकम किसको लौटानी चाहिए? पहली चीज़ तो यह कि अगर देने वाला खुद फौत हो गया या लापता हो गया, तो उसके वारिसों को वापस किया जाए। लेकिन अगर उसके वारिस भी लापता है, कुछ पता नहीं है, कोई अजनबी शख्स है, तो ऐसी सूरत में फिर उसकी तरफ से सदका कर दिया जाए। फिर ये बहुत से सवाल इसी पर हैं कि जैसे कोई औरत बहुत मजबूर है या बीमार है, तो फिर वही मैं एक दफ़ा जो जवाब दे चुकी हूँ ना कि फ़मन सुर्र गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह, तो हर शख्स ये देखे कि वो कितना मजबूर है, कितनी इज़्तिरारी कैफियत में है और कितनी मुश्किल में है, फिर उसका मामला अल्लाह के साथ है। इसको एक आम उसूल के तौर पर हम इसकी जवाज़ का फतवा नहीं दे सकते।
कहते हैं कि जैसे बाज़ू का हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं और उसके साथ इनामी चीज़ें होती हैं और फिर वो कूपन खरीदते हैं और फिर वो इनाम निकल आता है, तो वो पैसा कैसा है? बात यह है कि इनाम है किस चीज़ का? ये इनाम मिलता है किसी कारकर्दगी पर। मैं पहले तो लफ्ज़ इनाम की बात करती हूँ ना, कि इनामी सकीन है जिनको कहते हैं। इनाम किसी को कब मिलता है? जब कोई मेहनत करता है, कोशिश करता है और उसको सिले के तौर, मसलन बच्चे को स्कूल में इनाम मिला, क्यों मिला? उसका मतलब ये कि वो क्लास में फर्स्ट आया है तो उसको इनाम मिलना चाहिए। आप जाके अपनी ज़रूरत का सौदा खरीद रहे हैं, ब्रेड खरीद रहे हैं, अंडे खरीद रहे हैं, उस पर आपको किस लिए इनाम मिले? पहले तो ये कि ये लफ्ज़ ही धोखे का है, फरेब है इस लफ्ज़ में, यानी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना कि इनाम दे रहे हैं आपको। काहे का इनाम, किस कमाल के नतीजे? दूसरी बात ये कि अभी मैंने जिक्र किया था कि कोई भी आमदनी जो बाई चांस हो, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी कोशिश के, वो दुरुस्त नहीं है इस्लाम में। यानी या तो किसी को अपने दिल की खुशी से आपको कुछ तोहफा देना चाहिए और वो भी किसी मौके की मुनासिबत से ना। अब ये तो नहीं कि राह चलता वो कोई शख्स हो तो आपसे कहें ये तोहफा लीजिए, ठीक ये तो तोहफा है। यानी तोहफा भी आखिर किसी मुनासिबत से होता है, किसी खुशी के मौके पर, किसी शादी, किसी ब्याह, किसी, यानी कई वजूहत हो सकती है तोहफे की, तो उनमें से ये तोहफे का कौन सा मौका है? फिर दूसरी बात यह है कि ऐसी यकायक मिलने वाली आमदनी बसा अवकात लोगों को सरकश बना देती। जो आमदनी आप मेहनत से, कोशिश से डिजर्व करते हुए हासिल करते हैं, उसका असर माशरे पर कुछ और होता है। और वो आमदनी जो रातों रात आपको लखपति बना देती है, उसके नतीजे में खराबियां कुछ और तरह की आती। इसलिए इत्तेफाकी तौर पर मिलने वाली ऐसी आमदनी जो है वो मना है। ये एक तरह से जुआ भी बनता है। बात यह है कि ये जो मौका है आज का, ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने का है। मुसलमान आखिर क्यों नहीं सोचते कि देखें कि जब तक बैंकों का सिस्टम नहीं था, तब भी माशरे के अंदर आखिर पैसा होता था लोगों के पास और लोग उसे इस्तेमाल करते थे। उसका तरीका ये होता था कि अगर कोई भी मसलन इंडस्ट्री लगानी है, 5 लोग 10 लोग मिल जाएं और उसे इस्तेमाल करें और उसमें मुनाफा में शरीक हो और उससे फिर मजीद उसको आगे बढ़ाएं ताकि माशरे के अंदर खुशहाली फैले, ना कि सिर्फ चंद इदारों को मजबूत कर दिया जाए और बाकियों को जो है वो कंगाल कर दिया जाए।
जुमे के दिन मैं पढ़ाकर यहाँ से जब गई तो एयरपोर्ट पे जब मैंने बोर्डिंग पास लिया तो उसके साथ उन्होंने जो 2 कूपन दिए और कहा कि ये भर कर आप वहाँ डाल दें एक डिब्बे में। मैंने कहा कि ये क्या चीज़ है, ये क्यों भरने हैं? तो कहने लगे कि इस पर स्कीम शुरू की है 1 किलो गोल्ड की। मैंने कहा ये तो जुआ है और ये हराम है, मुझे तो ये नहीं करना। तो कहते फिर रख लूँ? मैंने कहा आप रख लीजिए, मेरे लिए तो इसको हाथ लगाना भी दुरुस्त है। जहाँ कोई हराम चीज़ हो या कोई गलत चीज़ की आपको ऑफर कर रहा हो, तो वहाँ थोड़ी सी जुर्रत ईमानी से काम लेकर बहुत अच्छे अंदाज में उसको भी समझा दिया कीजिए। अगर सारे लोग बोर्डिंग पास लेते वक्त कम अज़ कम इतना जुमला बोल देते कि ये दुरुस्त नहीं है, तो क्या ऐसी कोई स्कीम चला सकती? नहीं। इन सारी चीज़ों को हमने खुद प्रमोट किया है क्योंकि हम ये मानने को तैयार ही नहीं कि ये चीज़ें जुए में आती हैं या ये गलत हैं। बहुत से लोग ये हुज्जत करते हैं ना, अच्छा अगर सूद नहीं तो फिर लाइए कोई और चीज़, ऐसे खड़े खड़े कोई आप मैजिक से उनको दूसरा निज़ाम हाथ में पकड़ा देंगे। एक मुसलमान का ये तर्ज अमल नहीं होना चाहिए। हमें एक हराम चीज़ को और कुछ नहीं कर सकते तो पहला काम तो ज़रूर करें कि हराम मान लें। गलती को गलती ही ना मानना उससे बड़ा जुर्म है। तो पहली चीज़ ये है, इन सब बातों के बताने का मकसद क्या है कि हम अच्छे और बुरे का फ़र्क पहचानें। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि हम उससे निजात के तरीके सोचें। जब पहले ही हल्ले पे हम कह देते हैं जी नहीं आज के दौर में इससे छूटना मुमकिन ही नहीं और हमारी बहुत मुश्किलें हैं, हम नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आपको एहसास ही नहीं कि आप कितने गलत काम में मुबतला हैं। और जब एहसास ही नहीं गुनाह का, तो फिर तौबा कब होगी? और तौबा नहीं तो माफ़ी कैसे हो जाएगी? हाँ, इसलिए हमें कम अज़ कम रुजू तो करना चाहिए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته